हरे कृष्णा। तो काम्य वन के अंदर एक अद्भुत जगह है जिसका नाम है विमल कुंड, उसकी कथा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा अभी। और जो जो लोग आई कैंप में आने वाले हैं उन सब लोगों को इसका दर्शन होने का, इस सब चीज़ों का दर्शन हो सकता है यात्रा में। तो ऐसा है कि एक राजा थे सिंधु देश के, जिनका नाम था राजा विमल। वो बहुत कुबेर जैसे अमीर थे और सर्वगुण संपन्न थे, बहुत धार्मिक थे, भगवान के कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी कई हजार पत्नियां थीं, लेकिन काफ़ी समय होने पर भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो एक बार एक मुनि उनके पास में आए। अभी सिंधु देश जो है वो इतिहास में उसका नाम आता है, जयद्रथ भी उसी देश का राजा था, उसके बाद में हुआ सिंधु देश का। एनीवेज तो राजा विमल उसके राजा थे। याज्ञवल्क्य मुनि उनके घर में आते हैं और वो उनको प्रश्न करते हैं कि आप इतने चिंतित क्यों नजर रहे हो। उन्होंने कहा आप तो त्रिकालदर्शी साधु हैं, आप जानते हैं हमारे मन में क्या व्यथा है, फिर भी आप पूछ रहे, इसलिए हम उत्तर देते हैं कि हमारे घर में संतान नहीं है। इतनी सुंदर कमल नयनी और बहुत सर्वगुण संपन्न पत्नियां हैं लेकिन उनको संतान प्राप्त नहीं है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ध्यान लगाते हैं और देखते हैं आगे पीछे, सब सोचते हैं वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में, और फिर आँख खोल के बताते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बदले में आपको करोड़ों कन्या होगी, एक दो नहीं, करोड़्स ऑफ डॉटर्स। यहाँ पर एक लड़की का विवाह करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन राजा थे तो उसके अनुसार उनको पत्नियों को करोड़ों कन्या प्राप्त होती है। और वो कहते हैं, उनको वरदान देते याज्ञवल्क्य मुनि कि इन सब करोड़ों पत्नियों का, कन्याओं का जो विवाह है वो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के साथ में होगा। और वो कब आएंगे उनका वर्णन करते हैं कि वो नीले रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं, वनमाला पहनते हैं, उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है, वो मोरपंख धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं, जब वनों में खेलते हैं, ऐसा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं उनका। और वो कब मिलेंगे, बहुत आतुर होते हैं सुनकर, बोले इसी युग में कुछ समय बाद में उनका अवतार होगा, फिर आप उनको यथावकाश दर्शन करना और उनसे अपनी पत्नियों का विवाह कर देना। तो वो यथावकाश भगवान का अवतार होता है, तो वो कहते हैं, उनको बताते हैं कि वसुदेव के घर में वो आएंगे, वसुदेव देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। तो वो जब समय आता है याज्ञवल्क्य मुनि के कहने के अनुसार, तो राजा विमल सिंधु देश से अपने दूत को मथुरा भेजते हैं कंस की नगरी में और पूछताछ करते हैं। जैसे वो पूछताछ करते हैं इसके बाद वो बोले बोलना नहीं, सब लोग कंस से डरे हुए थे, बताते हैं बाजू में लेकर उसको, किसको बताता नहीं, अब ये सब लोग डरे हुए यहाँ पर हैं कि वसुदेव के छह पुत्रों को कंस ने मार दिया है, सातवीं कन्या थी उसको मारने का प्रयास किया तो वो आकाश में उड़ गई, आठवां क्या हुआ पता नहीं। तो फिर वो जाते हैं वसुदेव को मिलने के लिए, तो उनको भी यही जवाब मिलता है, तो फिर वो वापस लौट के आते हैं, राजा को मिलते हैं, बताने लगते हैं क्या क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन ये सब मैंने आपको सुनाया कि कंस की नगरी में क्या क्या मुझे समाचार मिला, लेकिन मुझे एक अद्भुत दृश्य नजर आया जब मैं वापस लौट के आ रहा था। जब मैं लौट के आ रहा था तो वृंदावन के मार्ग में मुझे ऐसा नजर आया कि एक बहुत ही सुंदर बालक अपने गोरे भाई के साथ सांवले रंग का, श्याम वर्ण का बांसुरी बजाता हुआ, श्रीवत्स के चिन्ह वाला, मेघ वनमाला पहना हुआ, जंगल में वनों में खेलते हुए नजर आया। लेकिन एक ही गड़बड़ थी, आपने कहा था याज्ञवल्क्य मुनि के अनुसार कि वो चतुर्भुज होगा, मतलब उसके चार भुजाएं होंगी, और वो तो मथुरा में था ही नहीं, लेकिन वैसा ही वर्णन वाला बालक जो है वो मुझे वहां पर दिखाई पड़ा वृंदावन में जमुना किनारे खेलते हुए। सब कुछ चिन्ह थे उसके अंदर, घुंघराले बाल थे, बांसुरी थी, मोरपंख था, वनमाला, श्रीवत्स का मणि, सब कुछ था लेकिन केवल दो भुजाएं थी। तो मुझे ये रहस्य समझ में नहीं, अभी क्या करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन आपका वर्णन पूरा उस बालक में मुझे दिखाई पड़ा, तो फिर उस समय वो चिंता में, अभी क्या करना चाहिए, अभी तो याज्ञवल्क्य मुनि ने तो चार भुजाओं का वर्णन किया था, और मुनि लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो तो सच बोलते हैं, समझे कैसे इस चीज़ को। तो उतने में दिग्विजय करने की इच्छा से भीष्मदेव वहां पहुंच जाते हैं, और भीष्मदेव तो उनको युद्ध नहीं करते हैं, तो वैष्णव है तो उनके मिलने के लिए आते हैं, मित्रता के हाथ बढ़ाने के लिए। तो भीष्मदेव को थोड़ा दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि भीष्मदेव बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने बचपन से ही अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था विश्वदेव ने, ब्रह्मचर्य और तपस्या और भगवान की भक्ति के बल से। तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे विष्णुदेव, आप तो परम संत हो, क्षत्रिय के रूप में काम कर लेकिन परम संत हो, आप बताइए इसका रहस्य क्या है। तो विष्णुदेव कहते हैं कि मुझे व्यास देव ने गुप्त रूप से ये बात समझाई थी कि चतुर्भुज नारायण, चार भुजा वाले परम वैकुंठाधिपति, वो जब जन्म लेंगे कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के गर्भ में, तो वहाँ से उनको वसुदेव को भगवान ने आदेश दिया और दो भुजाओं के बन गए वो गुप्त रूप में, और वहाँ से उनको गोकुल में लाया गया। और गोकुल में नंद महाराज के यहाँ पर वो पल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनका बालक है कि नहीं, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार वसुदेव ने वहाँ के कन्या को उठा के ले गए वो, जो आकाश में उड़ गई, और जो उनके पुत्र को वहाँ पर रखा। तो यशोदा को लगा कि उनको पुत्र ही प्राप्त हुआ है, तो वो अपने पुत्र के रूप में ये दो भुजा वाले बालक को पाल रहे हैं, लेकिन है वो ही जो वसुदेव के और देवकी के गर्भ से कंस के कारागृह में जिनका जन्म हुआ था। तो भस्मदेव की कृपा से ये रहस्य जो है, ये जो क्वेश्चन था उनका, उसका उत्तर उनको मिल जाता है। तो फिर वो अपने दूत को वृंदावन में भेजते हैं और फिर दर्शन करते हैं कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान तो बाल भाव में है ना, वो सखाओं के साथ खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, गा रहे हैं, गायों को चला रहे हैं। तो फिर उनको एकांत में मिलते हैं वो और उनसे बात करते हैं कि मैं राजा विमल की ओर से आया हूँ और उनकी करोड़ों कन्या जो है उनका विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हम अभी चलते हैं, क्योंकि राजा विमल जो है भगवान के परम भक्त थे, वो जानते हैं हृदय से सब कुछ। तो एक छोटी सी रहस्य की बात इसमें यह है कि जो करोड़ों कन्या थी विमल राजा को प्राप्त हुई थी, वो कौन थी, उनका इतिहास क्या है। कि जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में थे ना, जब उनको लीला कर रहे थे, बचपन में थे, बचपन से वो बड़े हुए ना वहाँ पर, फिर उनका विवाह हुआ सीता से, फिर वहाँ से वो वनवास में गए हैं, फिर वो नासिक दंडकारण्य जहाँ पर हम लोग यात्रा में जाएंगे अभी, वहाँ पर वनवास के लिए गए हैं। तो जब वो अयोध्या में थे और जब वो जवान बने, तो अनंत कामदेव की सी भी उनका अधिक सौंदर्य था, इतने वो बहुत सुंदर थे भगवान। अनंत कामदेव भी उनके सामने शर्माते थे, ऐसे सुंदर था उनका। तो वो देखकर अयोध्यावासी जो कई कन्याएं थी वो मोहित हो गई उनको देखकर, और उन्होंने उनसे इच्छा प्रकट की कि आपसे पति पत्नी या कहते ना सखी का भाव प्रकट करने की हमारी इच्छा है, आपके साथ में उस रूप में सेवा करने की हमारी इच्छा है। तो भगवान उनको कहते हैं कि इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरी एक ही पत्नी होगी इस जन्म में, लेकिन आपका भाव देखकर मैं आपको वरदान देता हूँ कि जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तो आपके साथ में विवाह करूँगा। तो ये सारी करोड़ों अयोध्या वासिनी जितनी कन्याएं थी वो विमल राजा के गर्भ में, प्राणियों के गर्भ में पुत्री के रूप में प्रकट हुई। तो ये उनका बैकग्राउंड हो गया। फिर भगवान वहाँ से जब जंगल में खेल रहे हैं, वहाँ से हवाई मार्ग से उड़ते हैं हवा में दूत को लेकर, और सिंधु देश में पहुँच जाते हैं। तो उस समय सिंधु नरेश राजा विमल जो है वो बहुत महायज्ञ कर रहा होता है, और उसमें कई पुरोहित, कई ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, वेद घोष कर रहे हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए राजा भी यज्ञ में बैठे हुए हैं पत्नियों को लेकर, और राजा के भगवान के आनंद के लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। तो अचानक सबके बीच में भगवान हवाई मार्ग से प्रकट होते हैं। तो राजा जो है झट से उड़ जाता है, उसके आंखों से अश्रु आते हैं, शरीर रोमांच में कांपने लगता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान के हमारा उसका जो आसन राज सिंहासन है उसको बिठा देता है, उनके चरणों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उनको फूल अर्पण करता है, भोग अर्पण करता है, अच्छे अच्छे स्तुति वचन बोलता है प्रसन्न करने के लिए, और कहता है मेरा जीवन भगवान आपके लिए है और मैं सारा जीवन मेरा सब कुछ जो आपको नछावर करना चाहता हूँ। तो राजा अपना सारा कोष जो है, जितना उसके पास वेल्थ है, जितना जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, सारे कोष भगवान को चरणों में अर्पण कर देते हैं, अपनी पत्नियों को अर्पण कर देते हैं, अपने आप को शरीर सहित बोलते हैं मैं आपके शरीर में अपने आप को अर्पण करता हूँ, अपना राज्य अर्पण करते हैं, जो भी उनके हाथ में था, जो भी वो समझते थे कि मेरे हाथ में है, वो सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं, और यथावकाश अपनी सब कन्याओं को लेकर आते हैं और उनका उसी यज्ञ में भगवान के साथ विवाह होता है। तुरंत भगवान सब कन्याओं के साथ विवाह करते हैं, करोड़ों कन्याओं के साथ। फिर उसी समय उसी क्षण विमल राजा अपनी हजारों पत्नियों के साथ में भगवान उनको मुक्ति दिला देते हैं। सारूप्य मुक्ति, मतलब जैसा भगवान का शरीर है वैसे ही शरीर उन पत्नियों को और राजा विमल को प्राप्त होता है। चार भुजाएं प्राप्त होती है हर व्यक्ति को, नीला रंग, शंख चक्र, पद्म गदा हाथ में, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। मतलब भगवान का जैसा रूप प्राप्त होता है उनको, और भगवान के सामने ही भगवान की कृपा से गरुड़ जी प्रकट होते हैं और राजा विमल को, उनकी हजारों पत्नियों को गरुड़ पर विराजमान करके उनके सबके सामने वैकुंठ में प्रवेश करते हैं यात्रा करके। और फिर भगवान इन करोड़ों पत्नियों को लेकर हवाई मार्ग से कामे वन में आते हैं। अभी हमारा जो स्थान है वहाँ की कथा आरंभ होती है, तो सब लोगों को लेकर वो कामे वन में आते हैं और हर एक कन्याओं को वहाँ पर घर बना देते हैं। कोई भगवान के पास कमी नहीं है कुछ चीज़ों की, चाहे करोड़ों पत्नियाँ हों, हजारों पत्नियाँ हों, चाहे अनंत करोड़ गोपियाँ हों, सबके लिए साधन भगवान के लिए उपलब्ध है। सबको वहाँ पर रखते हैं और जो इच्छा उनके मन में थी अयोध्या वासिनी कन्याओं के रूप में भगवान के साथ में पति पत्नी का संबंध प्रेम प्रकट करने की, वो सब इच्छाएं वो पूर्ण कर देते और उनके लिए अलग रूप से, गुप्त रूप से, वृंदावन में बाल रूप में थे, यहाँ पर वो युवा रूप में प्रकट हो गए एक पति के रूप में। उसी समय उनकी बाल लीला चल रही है नंद बाबा के पास में, यशोदा के पास में, वनों में घूम रहे, गाय चरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुप्त रूप से सबके साथ विवाह करते हैं और रास रचाते हैं उनके लिए स्पेशल रास। शरद पूर्णिमा जो रास किया है वृंदावन में वो अलग है, चंद्र सरोवर में वसंत ऋतु में रास किया है वो अलग है, और ये रास उनके लिए स्पेशल बनाते हैं। और उस रास नृत्य में जब करोड़ों पत्नियों के साथ में नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तो सभी पत्नियों की आँखों से प्रेम के अश्रु निकलते हैं और उस प्रेम के अश्रुओं से वहाँ पर एक विशाल कुंड बनता है जिसका नाम है विमल कुंड। इतना भव्य कुंड है वो, आप भी आप दर्शन कर सकते हैं, दिखाऊंगा आपको। तो ये इतना पवित्र कुंड है कि नारद मुनि जी बता रहे हैं गर्ग संहिता में कि इस कुंड के पास पहुंचते ही या इसमें आचमन करते ही या इसमें स्नान पूजा आदि कार्य करते ही मनुष्य को वैकुंठ नहीं गौलोक धाम प्राप्त होता है भगवान। यहाँ से तो सिंधु देश से तो राजा विमल वैकुंठ में गए, लेकिन चूंकि ये भगवान की पत्नी अयोध्या वासिनी गोपियाँ जो थी, भगवान की पत्नी बनने के बाद भगवान के साथ में उन्होंने दिव्य रास नृत्य किया और उस रास नृत्य के सेवा भाव के आनंद में जब उनके आंखों से प्रेम विवल होकर अश्रु निकले, वो अश्रु यहाँ पर जमा हो गए हैं, मतलब साक्षात प्रेम है वो, वहाँ का जल जो है उसका स्पर्श, उसकी पूजा, उसका स्नान दान पुण्य करने से वहाँ पर उस व्यक्ति को गौलोक धाम प्राप्त हो जाता है। तो ये विमल कुंड जो है ये कामेवन का सबसे विशाल कुंड है और उस विमल कुंड के किनारे पे आपको भगवान का जो स्कल्प्टर मतलब स्थापति जो है भगवान का, क्या नाम है उसका, विश्वकर्मा, जो भगवान के लिए महल बनाता है, भगवान के धामों के निर्माण करता है वो भगवान के आदेश के अनुसार, उसकी मूर्ति है। जगन्नाथ जी का मंदिर है और बलदेव जी का मंदिर है और कई प्रकार के अलग अलग मंदिर उसके किनारे में हैं। तो आइए हम सब लोग उसका दर्शन करते हैं। श्री विमल कुंड धाम की जय।